खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहे इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहे इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवा से रोशन जमी आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता। यहाँ तेरी परदा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहां। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहां। सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान, तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भुकी, फिर ये दोजख को लाने की जहमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोजख को लाने की जहमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें, सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आरंभ में हम सभी ने बहुत सुंदर एक गीत सुना कि खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। आज मनुष्य तेरे नाम पर इतना लड़ते हैं, फिर भी तू अनजान क्यों है। ऐसे अनेक प्रश्न गीत में पूछे गए थे और शायद आज हर मनुष्य के मन के अंदर भी ईश्वर के प्रति ये सारे प्रश्न हैं, क्योंकि जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक तो फिर भी एक ही मान्यता रहती है कि हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने लगा है। वहां तक कि विज्ञान भी आज आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, चाहे उसको किसी ने सोल कहा, शक्ति कहा, एनर्जी कहा, रूह कहा, परंतु है उस आत्मा की ओर इशारा। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां आज संसार में इतने मतमतांतर हो गए कि कहा जाता है कि जितने मुख उतनी बातें, जितने दिमाग उतने विचार ईश्वर के बारे में हो गए। और ईश्वर को जितना ही समझने का प्रयत्न किया उतना ही कहीं न कहीं उलझते गए कि आज मनुष्य बहुत कंफ्यूजन में है कि आखिर भी वो परमात्मा कौन है, वो सत्य क्या है। और इसीलिए आज इतने प्रश्न मनुष्य के मन के अंदर है, तो आखिर भी वो परमात्मा कौन है। एक बार एक बहन ने आकर के मुझे कहा कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे के प्रश्न के जवाब में यही कहते कि हिंदू धर्म में सारे भगवान है और हमें सबके आगे सिर झुकाना है, नमन करना है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन वो बच्चा कहता है कि भगवान तो एक होना चाहिए, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं। और अगर ये सारे भगवान है तो इन सब का हेड कौन है। वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती और इसीलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है कि बेटा मंदिर चलो, वो बच्चा मना कर देता है। यही कहता है कि मंदिर जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूं कि अपने मन को कहां एकाग्र करूं, किस भगवान में एकाग्र करूं। इसलिए वो बच्चा मंदिर नहीं जाता है। तो माँ को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है। लेकिन शायद वो एक माँ का प्रॉब्लम नहीं है। आज कई बच्चे धीरे धीरे ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं, हमारी अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता का पता ही नहीं है। तो सत्य क्या है? जब ईश्वर को कहा जाता है ईश्वर एक है, वो सत्य है, तो वो सत्य क्या है? जिस तरह से कहा जाए कि ईश्वर की वास्तविकता को समझना है
तो एक दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा ही परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था ईश्वर सर्वव्यापी है, कहां नहीं है, जहां देखूं वहां तू ही तू है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड। ईश्वर अगर है तो उसका सबूत दो। अब जो ये व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी ओपिनियंस पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीजन लिया होगा, व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है, क्या कहेंगे। और इसीलिए आज की दुनिया के अंदर मनुष्य भी बहुत कंफ्यूज्ड है कि किसको कहा जाए परमात्मा। वो कहानी याद आती है कि एक बार पांच सुरदास थे, उन्हें कहा गया आप हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंबे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, एक के हाथ में सुंड आई तो कहा सांप जैसा है, और एक के हाथ में कान आए तो कहा सूप जैसा, पंखे जैसा है। यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करती हूं कि मान लो कि ये पांचों सुरदासों को कहा जाए कि एक छठा सुरदास दूर बैठा है, आपको जाकर के उनको बताना है आपने जो महसूस किया कि हाथी कैसा है। अब ये पांचों वन बाय वन जाते हैं छठे सुरदास के पास और हर एक अपनी बात कहता है। पहला जाकर के कहता है कि देख भाई हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंबे जैसा है। थोड़ी देर के बाद दूसरा जाकर कहता है कि देख भाई हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। थोड़ी देर के बाद तीसरा जाकर कहता है देख भाई हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। थोड़ी देर के बाद चौथा जाकर कहता है कि हाथी एकदम लचीला सांप जैसा है। और पांचवा जाकर कहता है कि देख भाई हाथी जो है पंखे जैसा है। अब ये पांचों की बातें सुनने के बाद ये छठा सुरदास क्या डिसीजन लेगा, क्या समझेगा कि आखिर ये हाथी है कैसा। हर कोई आता है अलग बात कहता है, ये हाथी है कैसा, है ना? परंतु फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि पांचों ने तो महसूस किया है ना, तो झूठ थोड़ी बोलते होंगे, सही होगा। होगा कोई ऐसा प्राणी जो घड़ी घड़ी रूप बदलता होगा, विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि एक सातवां सूरदास दूर बैठा है, आपको जाकर उसको बताना है कि हाथी कैसा है, जो आपने समझा पांचों की बातें सुनने के बाद, उसके आधार पर आपको जाकर के उसको बताना है। ये छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और कहता है, देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन ये पांच ने जो महसूस किया है, उन्होंने जो मुझे बताया है, वो मैं तुझे बताता हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो खंभे जैसा हो जाता, कभी वो दीवार जैसा हो जाता, कभी वो रस्सी जैसा हो जाता, कभी वो सांप जैसा हो जाता, और कभी वो पंखे जैसा हो जाता है। अब सातवां सूरदास जो था, जिसका आईक्यू लेवल बहुत हाई था, ये बात सुनने के बाद वो क्या कहेगा, क्या कहेगा? कहेगा कोई प्राणी रंग बदल सकता है, ये तो समझ सकते हैं, लेकिन पूरा स्केलेटन, ये ढांचा ही बदल दे, हाउ कैन दिस बी प्रैक्टिकल, ये कैसे संभव होगा, है ना? तो वो छठा सूरदास क्या कहते, पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोलते होंगे। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो वो कहता है, आई कांट बिलीव दिस, मैं नहीं मानता, क्या छोड़ दो। कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं हुई, हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी शक्ति से ईश्वर के कोई ना कोई गुणों को महसूस किया। किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया तो उन्होंने कहा प्रकृति परमेश्वर है, किसी ने कोई आत्माओं में कुछ महसूस किया तो कहा आत्मा ही परमात्मा है, किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया तो कहा कण कण में परमात्मा है। हर एक ने अपने हिसाब से बातें बनाई बताई और मनुष्य को सुनाया, मनुष्य ने विश्वास कर लिया कि ऋषि मुनियों ने कहा है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोलते हैं। वो मनुष्य ने आज की जेनरेशन को समझाना चाहा कि ये सारे भगवान है। अब आज के संसार का मनुष्य जिसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, वो क्या कहेगा, क्या कहेगा? हाउ कैन यू बिलीव दिस, कैसे आप मान सकते हो? ये सारी मते एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को परमात्मा कहे? क्या ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे? क्या निराकार को कहे, साकार को कहे या है ही नहीं कहे? सारी मते एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। हाउ कैन यू बिलीव दिस? तो मनुष्य ने क्या कहा, ऋषि मुनियों ने कहा है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो आज का इंसान भी क्या कर रहा है, कहते हैं आई डोंट बिलीव दिस, और अगर ये है सत्य
तो सबूत दो. कैन यू प्रूव इट कि ये परमात्मा है.
तो इसीलिए आज उस सत्य को हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर भी सत्य क्या है.
ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने कहा इसलिए अपने आपको मान लेना है. नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी मतें हैं, इसलिए मत नहीं देंगे. लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आपको अपनी मत को कसना होगा और सत्य को समझना होगा.
और ये कसौटी है पांच बातें. ईश्वर किसको कहा जाए तो पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्व धर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य. ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है. गॉड इज वन, तो ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड. हर धर्म वाले उसको परमात्मा के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे परमात्मा. दूसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे परमेश्वर. उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है. तो जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसको कहेंगे परमात्मा. तीसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्व परे हो, पर हो. भावार्थ कि जैसे मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, परमात्मा उन सभी चक्रों से पर है. परमात्मा के लिए यही गीता के अंदर कहा गया चौथे अध्याय में, मैं अजन्मा हूं, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है. न जन्म है न मृत्यु है, उससे वो परे है. जिसने जन्म लिया उसको देह है और देह के संबंध है. परमात्मा अजन्मा है तो अव्यक्त है, उसको कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है. न देह है न देह के संबंध है, उससे परे है. अच्छा, जिसको देह है उसने कर्म किया, और कर्म किया तो कर्म का फल भोगना पड़ता है. तो जो कर्म और कर्म के फल के चक्र में आते हैं उसको कहेंगे परमात्मा. जो कर्म और कर्म के फल के चक्र में आते उसको कहेंगे मनुष्य. परमात्मा कर्म और कर्म के फल के चक्र से भी परे है, अकर्ता अभोक्ता. तो अजन्मा, अव्यक्त, अकर्ता, अभोक्ता, ये परमात्मा की महिमा है. जिसने कर्म किया, या तो वो कर्म पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा, तो पाप और पुण्य के फल चक्र के अंदर हम आते हैं. परमात्मा उस चक्र से भी परे है, पाप और पुण्य के चक्र से भी परे है. और पांचवा, के पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता या दुख मिलता, तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते हैं, परमात्मा इस चक्र से भी परे है. तो जो इन पांचों चक्र से परे हो उसको कहेंगे परमात्मा. न जन्म और मृत्यु, न देह और देह के संबंध, न कर्म और कर्म का फल, न पाप और पुण्य, न सुख और दुख, इन सभी चक्र से ऊपर उसको कहेंगे परमात्मा। चौथी बात कि पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता हो, संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान जिसके पास है। आदि क्या थी, मध्य क्या था, अंत क्या है, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला वही परमात्मा है। मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला त्रिनेत्री, उसको कहेंगे परमात्मा। और परमात्मा को कहते त्रिदेव, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उत्पन्न करने वाला त्रिदेव, उसका भी जो रचयिता है उसको कहेंगे परमात्मा। तो ये तीन की महिमा उसी के साथ लगती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिदेव। और पांचवा परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, उसको कहेंगे परमात्मा। जिसकी महिमा के अंदर कहा गया है कि अगर धरती का कागज बनाए, सागर की स्याही बनाए और जंगलों की कलम बनाए और स्वयं माँ सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, उसको कहेंगे परमात्मा। तो ये पांचों बातें जिसके साथ लगे उसको कहेंगे परमात्मा। पांचों बातें कौन सी है? सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। ये पांच बातें हैं कसौटी, जिस पर अभी एक एक मत को कसना होगा और समझना होगा सत्य क्या है। पहली बात, जब हम कहते हैं कि प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? करेंगे? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? वो किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? प्रकृति ही परमात्मा कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? रचना है कहना सत्य है? अगर प्रकृति परमेश्वर की रचना है तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो हमने मान लिया सत्य तो नहीं है। क्लियर हो गई पहली बात? क्लियर है? दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर हमने ये क्यों गाया, तुम मात पिता हम बालक तेरे? अब सत्य क्या है? क्या हम ही परमात्मा है या हम उस परमात्मा की संतान है? क्या कहेंगे? सत्य क्या है? संतान है कहना सत्य है, तो फिर आत्मा को परमात्मा कहना अज्ञान है? अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो हमने कह दिया सत्य तो नहीं है। आज देखो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसको टाइटल मिल जाता है। किसी ने पुण्य का काम किया तो कहेंगे पुण्यात्मा, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा। तो पुण्यात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, देवात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। कभी ग्रामर में भी परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है। गॉड इज वन, गॉड्स एंड गॉडेसेस आर मेनी बट गॉड इज वन। गॉड्स एंड गॉडेसेस जब कहते हैं तो दिव्य आत्माओं के लिए कहते हैं। तो भारत में देव आत्माएं भी कितनी हो गई, 33 करोड़ देवी देवताएं हो गए। तो देव आत्माएं भी अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। तो क्लियर हो गई ये बात, आगे बढ़े। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं, एक बड़ा परमात्मा था, उसके टुकड़े टुकड़े होकर के नीचे आए धरती पर आत्माओं के रूप में, और अंत में जाकर के फिर से विलीन होकर के परमात्मा बन जाना है। इसलिए कहते हैं हम आत्माएं परमात्मा का अंश है, अंश नहीं है, क्योंकि आत्मा की महिमा के लिए ये कहा गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को कभी तलवार से काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, पानी से भिगोया नहीं जाता, हवा से सुखाया नहीं जाता। सवेरे भी हमारे गवर्नर साहब ने ये बात कही। तो प्रकृति के कोई तत्व आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो उसके टुकड़े कैसे होंगे। आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है तो परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है तो उसके टुकड़े नहीं हो सकते। कई बार कई लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, इसी तरह एक बड़ा परमात्मा से हम सभी नीचे आए टुकड़े होकर के और अंत में जाकर के विलीन हो जाना है और परमात्मा बन जाना है। आत्मा और परमात्मा शक्ति है। शक्ति के लिए कहा जाता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया वो संभव है क्योंकि वो मैटर है। मैटर और एनर्जी का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। मैटर मैटर में मिल जाएगा, एनर्जी का अपना अस्तित्व है। ट्रांसफर जरूर होती है लेकिन एनर्जी की अपनी एक अस्तित्व है। इसीलिए आत्मा का अस्तित्व अपना है, परमात्मा का अस्तित्व अपना है, वो मिल नहीं सकती है। ठीक है, कई बार कई लोग एग्जाम्पल देते हैं जैसे पुत्र पिता का अंश है, इसी तरह आत्मा भी परमात्मा का अंश है। पुत्र पिता का अंश हो सकता है ये शरीर, अगेन इट इज मैटर, मैटर मैटर का अंश हो सकता है लेकिन आत्मा मैटर नहीं है। इसलिए ये कंपैरिजन उसके साथ नहीं हो सकती। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तीसरी बात, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, अब अज्ञानता के कारण हमने दो दो बातें किया। एक तरफ कहा ब्रह्म ईश्वर है, दूसरी ओर कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। अब सत्य क्या है, आपका विवेक क्या कहता है। ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है या पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर है कहना सत्य है। क्या कहेंगे? पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर है कहना सत्य है। इसीलिए गीता में आता है कि मेरा धाम परम धाम है ना? जो सूर्य चंद्र तारों के प्रकाश से परे है और सूर्य चंद्र तारों का प्रकाश उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन जो स्वयं दिव्य प्रकाशमय है वो मेरा धाम है, परम धाम है ना? तो पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर है कहना सत्य है। चौथी बात, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, जहां देखूं वहां तू ही तू है, ये कहां तक सत्य है? जहां देखूं वहां तू ही तू है, सर्वव्यापी है, ये कहां तक सत्य है? अगर आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है, लास्ट में आप मेरे से मिलना, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है इतना दूर से, है ना? आपको मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, हर बात के बाद पूछ रही हूँ कि आगे बढ़े, है ना? आगे आइए। हाँ, बराबर बात बोली आपने कि शास्त्र कहते हैं कि कण कण में भगवान है। मैं आपकी बात पर आ रही हूँ आपकी बात पर। आप थोड़ा एडवांस चल रहे हैं मेरे विचारों से, मैं आपकी बात पर आ रही हूँ। विवेक से अगर सोचा जाए तो कण कण में भगवान कहना, क्या कूड़े कचरा गंध गटर सब में भगवान है? आपका विवेक उस बात को स्वीकार करता है? स्वीकार करेगा? कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है। आज रोज हम घर में से झाड़ू मारते हैं, क्यों मारते हैं? यही कहते हैं जहां स्वच्छता है वहां प्रभु का वास है। अगर कण कण में भगवान है तो झाड़ू मारने की जरूरत है क्या? इसीलिए लिटरल फॉर्म में नहीं जाओ। लिटरल फॉर्म में अगर जाएंगे तो आपके सामने 10 सवाल आ जाएंगे। अगर आज हमें कोई कह दे कि फलाना व्यक्ति जानवर जैसा है तो भी हमें अपमान महसूस होता है, और ईश्वर ऊंचे से ऊंची शक्ति को हम कहे कि वो जानवर में भी है तो कूड़े कचरे में भी है, कण कण में, क्या उसका अपमान नहीं है? क्या उसका अपमान नहीं है? आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है? शास्त्रों की बात अलग है, क्योंकि शास्त्र लिखे कितने साल हो गए। आज बचपन में एक खेल खेला होगा आपने स्कूल में कि जब कोई पिकनिक पर टीचर ले जाती थी 50 बच्चों को, अगर एक गोलाकार में खड़ा कर देती थी खेल करने के लिए, और फिर एक बच्चे को बुलाकर उसके कान में कहानी कही जाती थी, और फिर वो कहानी उसको दूसरे के कान में सुनानी होती थी, दूसरा तीसरे के कान में, तीसरा चौथे के कान में, 50वें बच्चे तक आती थी, तो कहानी वही रहती थी या बदल जाती थी? क्या कहेंगे? वही रहती थी या बदल जाती है? बदल जाती है। शास्त्र लिखे हजारों साल हो गए, कितनी बार उसका इंटरप्रिटेशन हुआ। आज जो शास्त्र में बातें हैं, क्या जो कही गई वही है या उसमें भी अंतर आ गया है? क्या कहेंगे? क्या आपको वही पढ़ना है और भगवान का अपमान करते जाना है? क्या करेंगे? इसीलिए शास्त्र में कई बातें अपभ्रंश हो गई है, कई बातें का भाव बदल गया है, शास्त्रों में ये लिखा है, गीता में कहा है भगवान ने कि मैं हरेक के हृदय में वास करता हूँ। ये कहा है, हरेक के हृदय में वास करता हूँ। आज आपका कोई प्रिय व्यक्ति हो और बहुत दिनों के बाद अगर आप फोन करो उसको और उसके साथ बात करते करते आप ये कहो, अरे आप तो हमारे दिल में ही रहते हो, तो फिजिकली रहते हो? फिजिकली कोई रहता है या उसकी याद रहती है? भाव क्या है? आप तो हमारे दिल में रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकली आप उसके दिल में रहते हैं क्या? नहीं, इसका मतलब है आपकी याद हमारे हृदय में समाई हुई। ठीक इसी तरह भगवान ने भी जब कहा कि मैं हरेक के हृदय में रहता हूँ, माना मेरी याद हरेक के हृदय में है। भाव बदल दिया, कण कण में व्यापक नहीं कहा, मैं हरेक के दिल में रहता हूँ, माना परमात्मा की याद हरेक इंसान के दिल में है। ये भाव है ना? आज नहीं तो अगर ईश्वर कण कण में व्यापक हो, हरेक इंसान में हो, तो आज मनुष्य जब गलत काम करता है, बुरा कर्म करता है, तो ये कर्म किसका? आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो परमात्मा अंदर बैठ के क्या कर रहा था? क्या वो सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं है जो आत्मा को गलत कर्म से छुड़ा सके? इतनी ताकत नहीं है फिर बैठने का कोई मतलब? जैसे आज आपके गली में बच्चे खेल रहे हो, आपके बच्चे नहीं है, गली के बच्चे खेल रहे हैं और किसी बात को लेकर के वो बच्चे आपस में लड़ने लगे, मारपीट करने लगे, आप सामने बैठे हैं, देखते रहेंगे या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे, क्या करेंगे? छुड़ाएंगे, बेटा क्यों लड़ रहे हो, यही कहेंगे ना? क्यों लड़ रहे हो, अभी तो आप खेल रहे थे। और उस झगड़े को खत्म करेंगे, ये आपकी ताकत है। अगर एक शारीरिक पिता या एक मनुष्य भी बच्चों को आपस में लड़ते नहीं देख सकता है तो वो तो परमात्मा है। दया का सागर, करुणा का सागर सर्वशक्तिमान है, उसकी दया कहाँ गई उस वक्त? उसकी करुणा कहाँ गई? और अगर उसको इंटरफियर नहीं करना है तो बैठने का कोई मतलब? गीता में जब चौथे अध्याय में ये कहा, यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, अगर वो यही है तो आएगा कहाँ से? अगर वो यही है तो उसके होते इतना धर्म कैसे? और फिर कौन आएगा? शास्त्र में दोनों बातें, ये भी कहा है गीता के महावाक्य में भगवान वाच, यदा यदा ही धर्मस्य, अगर भगवान यही है, कण कण में व्यापक है, ये सत्य मानते हो आप, तो फिर गीता के ये महावाक्य गलत है, है? क्या कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है? इसीलिए कहा शास्त्र के भाव को बदल दिया है। शास्त्र के अंदर जो बात कही गई है उसके भाव को हम सभी ने समझा ही नहीं है। हृदय में वे वास करता हूँ, माना हरेक के दिल में मेरी याद समाई हुई है। लेकिन फिर भी जब अधर्म होता है तो अधर्म का नाश करने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। तो दोनों बातें सत्य है, दोनों ही बातें सत्य है। आज देखो कोई आपको कोई बात पूछता है और आपको बात मालूम नहीं होती है तो क्या कहते हैं ऊपर वाला, जाने छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, यही कहते हैं ना? हाँ, ऊपर वाला जाने, कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने, फिर वो ऊपर वाला कौन है, नीचे वाला कौन है? और अगर नीचे वाला भगवान है तो ऊपर वाला कौन है? फिर हमने ये क्यों नहीं कहा नीचे वाला जाने, ऊपर वाला क्यों कहा? जाने अनजाने पन में भी ऊपर वाला कहा, क्यों कहा? आज अगर देखो प्रकृति के अंदर भी ये विशेषता है कि अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा, संग का रंग। आज परमात्मा सर्व गुणों में अनंत और वो हम सबके अंदर विराजमान है और उसके कोई गुणों का संग का रंग ही हमें लगे नहीं, ऐसा हो सकता है? लेकिन तब जैसे आपने कहा क्या शास्त्र गलत है, शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है कि शास्त्र के अंदर जो कही गई बात है उसके भाव को हमने समझा ही ना हो, ये तो हो सकता है। आज एक छोटा बच्चा होता है जब घुटना करने जाता है और घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है तो माँ को बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चा कहीं रास्ते पर ना निकल जाए। तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी देख बाहर गया ना, वो कुत्ता उठा के ले जाएगा और वो बच्चा उस बात को सत्य मान लेता है और इसीलिए घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता है। जैसे ही कुत्ते को देखेगा क्या करेगा, वापस अंदर आ जाएगा और खुश होता है आई एम सेफ, ये प्रकट करता है कि मैं बाहर नहीं गया। लेकिन वही बच्चा 10-12 साल का हो जाए और उसके बाद उसको आप कहो कि देखो बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा? हंसेगा अपनी माँ पर कि मेरी माँ भी कितनी भोली है, इतना भी नहीं समझती है कि कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला है क्या, और हंसते हुए चला जाता है। और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में ले आएंगे, कहेंगे लो मैं ही घर में ले आया हूं, वो क्या ले जाएगा? ठीक इसी तरह वो छोटा बच्चा जैसे छोटा था ना समझ था तो उसकी माँ की हर बात को सत्य मान लिया, बड़ा होने के बाद समझदार हो जाता तो स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह शास्त्र में जो बातें कही गई थी मिडल एज में जब पाप कर्म वृद्धि को प्राप्त होने लगे तब ऋषि मुनियों ने ये बात कही कि हे मानव तुम जब पाप कर रहा है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है वो तुझे देख रहा है। भाव ये था ताकि मनुष्य पाप कर्म न करे। आज से 200 साल पहले भी भारत के अंदर ईश्वर का डर रहता था, लोग गलत काम नहीं करते थे। कोई किसी को अगर प्रेरणा भी देता था गलत काम करने के लिए तो मनुष्य क्या कह देता था, अरे बाल बच्चे वाला समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मना कर देता था। लेकिन आज मनुष्य विज्ञान के युग में बड़े हो गए, समझदार हो गए और इसलिए जब कोई याद भी दिलाता है अरे क्यों इतना पाप करता है थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, कहता है कि नहीं कहता है? वो डर भी नहीं रहा। और अगर कोई कहता है अरे ऊपर वाले का डर रख तो क्या कहता है, वो तुझे देख रहा है, तो क्या कहता है, वो देखता क्यों है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो छुड़ा सकता है मुझे, वो छुड़ाए, वो डर भी नहीं रहा। मनुष्य पाप करता ही चला गया। तो कहां मानते हैं हम शास्त्रों की बातों को, माना पाप नहीं किया ऐसा हुआ, अरे कदम कदम पर पाप कर रहे हैं, बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे उसकी भी सोच करके पाप कर रहे हैं। शास्त्र को कहाँ मानते हैं? मेरे को ये बताओ, शास्त्र को मानते थे कि भगवान कण कण में है तो कोई पाप करता था? माना डर नहीं रहा ना, तभी तो इतना पाप कर रहे। तो शास्त्रों को कहाँ माना हमने? माना क्या? नहीं माना। आज मनुष्य इतना पाप कर्म करने लगा कि वो वाल्मीकि जी की बात याद आती है कि वाल्मीकि जब लुटेरे था और उसने एक बार एक महात्मा जी को पकड़ा और कहा कि दे दो आपके पास जो कुछ भी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। महात्मा ने पूछा किसके लिए ये कर रहे हैं? कहा मुझे भी अपने परिवार को पालना है, उसके लिए कर रहा हूँ। महात्मा जी ने क्या कहा, जरा परिवार वाले से पूछ के तो आओ कि आपके पाप के भागीदार वो बनेंगे, जब फल भोगने का समय आएगा तो आपके साथ वो भोगेंगे। कहा मैं पूछ के आऊंगा, क्यों नहीं भोगेंगे, उनके लिए तो कर रहा हूँ। जब पूछने गया तो क्या कहा परिवार वालों ने, हम क्यों भोगे, तुम पाप कर रहा है तुम ही भोगो। कोई तैयार हुआ? ऐसे आज जो मनुष्य पाप कर्म कर रहे हैं कि बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे, लेकिन उन बच्चों के बच्चों से पूछ के तो आओ कि क्या आपके पाप में वो भागीदार बनेंगे। बनेंगे क्या कहता है विवेक, कोई बनेगा तो किसके लिए कर रहे हैं? जब भोगने का समय आएगा तब तो आपको अकेले को भोगना पड़ेगा, कोई आपका साथी नहीं बनेगा। और हरेक अपना नसीब लेकर आता है, आपने कितना भी इकट्ठा किया बच्चों के बच्चे खाएंगे करके, लेकिन अगर उसके नसीब में ही नहीं है तो क्या होगा, कोई ना कोई लूट के ले जाता है, उसके नसीब में तो आता ही नहीं है। तो आप किसके लिए इतना पाप कर रहे हो बताओ, किसके लिए कर रहे हो? तो क्या परमात्मा सर्वव्यापी है या उसकी याद सबके दिल में समाई हुई है, ये कहना ठीक है? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? उसकी याद सबके दिल में समाई हुई है, परमात्मा कण कण में व्यापक नहीं है, नहीं तो इतना पाप कर्म होता ही नहीं था। अगर शास्त्रों की बातों को मानते थे तो, शास्त्रों की बातों को नहीं मानता है, खाली कोटेशन देने के लिए बता देते हैं ये शास्त्रों में कहा हुआ है, खुद भी नहीं मानते हैं, पाप करते ही जा रहे हैं और फिर कहते भगवान देख रहा है। अरे देख रहा है तो डर तो रखो, डर तो रखो ना। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई, आगे बढ़े। पांचवी बात, जब कहते हैं वो निराकार है, न नाम है न रूप है नाकार है, आज संसार में नाम रूप आकार बिना कोई चीज है, कोई चीज नहीं है, हवा जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन एक चित्रकार को चित्र निकालना है और तेज हवा दिखानी है तो दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता है? कि चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है। और शांत प्रकृति दिखानी है तो भी दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता है? बड़ा शांत है, पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखाई दे रहा है। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है, तो नाम रूप आकार बिना कोई चीज है इस संसार में, नहीं है? तो क्या स्वयं परमात्मा नाम रूप आकार बिना हो सकता है? उसका कौन सा नाम रूप आकार है? जिस तरह मनुष्य का पिता मनुष्य है, पशु का पिता पशु है, पक्षी का पिता पक्षी है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है? अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप। इसलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है, कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसकी यादगार में वो ज्योत जलाई। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए?
वह भी ज्योति स्वरूप है।
अब उसके साथ वह पांचों बातें लगती है, तो भारत के अंदर हिंदू धर्म में जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा, ज्योतिर्लिंगम जो ज्योति की आकृति है, पूजा करने के लिए अपने भावनाओं को अर्पित करने के लिए उसको एक आकृति दे दी जिस पर हम अपनी भावनाओं को अर्पित करते हैं, और नाम दिया, आकृति दे दी, नाम दिया सदाशिव, गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम दिया। सदाशिव माना जो सदा कल्याण करने वाले हैं, सदा कल्याणकारी, ये नाम दिया। शिव माना परम पवित्र, शिव माना शांति, गुणवाचक नाम है। और इसीलिए भारत भर में द्वादश ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान माने गए हैं, जहां शिव की प्रतिमाएं रखी गई है। और जितने भी मंदिरों के नाम हैं, सारे मंदिरों के नाम भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, साउथ में जाओ रामेश्वरम के रूप में उसकी पूजा होती है, जिसकी पूजा स्वयं श्री राम ने भी की, जो श्री राम के आराध्य थे, है ना। वृंदावन में चले जाओ गोपेश्वर मंदिर मिलेगा, जो श्री कृष्ण के भी आराध्य थे। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर ना हो, उसको देव देव महादेव कहा, देवों का भी देव महादेव, सभी देवी देवताओं का भी आराध्य है, श्री कृष्ण का भी है, श्री राम का भी है। तो जिन देवियों की पूजा हम करते हैं, 51 पीठ जो बने हुए भारत के अंदर, वो देवियां कौन है? तो कहते हैं शिव शक्ति की आरती जी कोई गाए है, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां है। और यहां एक भारतवासियों ने गलती कर दी, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझने लगे, जहां दोनों का नाम अलग है शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप अलग है, एक है निराकार स्वरूप एक है आकृति, जहां दोनों का ऑक्यूपेशन ही अलग है, शिव को कहा सदा कल्याण करने वाले और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय होता है, एक कल्याण करने वाले एक विनाश करने वाले, नाम अलग स्वरूप अलग ऑक्यूपेशन अलग, तो एक कैसे हो सकता है बताओ? हो सकता है? नहीं हो सकता है। शंकर को परिवार में बताया, माँ पार्वती है, दो बच्चे हैं गणेश जी कार्तिक के, और सारा परिवार मिलकर के शिव की पूजा कर रहे हैं। देखा है ऐसा चित्र? देखा है ना ऐसा चित्र? शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया गया, किसका ध्यान कर रहे हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन था? शिव का ध्यान। कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने भी किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया, है ना। तो शिव और शंकर एक नहीं है, अलग है। अमरनाथ का यादगार जो है, वहां का महत्व क्या दिखाते हैं कि शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई थी, जिसके साक्षी वो दो कबूतर है। अब शंकर ने पार्वती जी को कौन से अमरनाथ की कथा सुनाई? फिर तो ये कहना चाहिए खुद की कथा सुनाई, अमरनाथ की कथा सुनाई। तो अमरनाथ और शंकर अलग है, तभी तो उसने सुनाई पार्वती जी को, है ना। तो इसीलिए कहा कि शिव और शंकर एक नहीं अलग है। शंकर ने भी उसका ध्यान किया। यहां से बाहर जाए इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म में जब हज यात्रा पर जाते हैं, वैसे मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, लेकिन काबा के पवित्र पत्थर के लिए मक्का जाते हैं हज यात्रा में। और ये हज यात्रा में हर कोई नहीं जा सकता है, हज में जाने के नियम भी बहुत कड़े हैं। लेकिन जो हज में जाता है, वहां जाने के बाद क्या करता है? अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शैतान को पत्थर मारता है, और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहता है, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। परवरदिगार परमेश्वर के लिए कहा, नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर माना तेज, प्रकाश। ज्योति माना, जिसको भारत वालों ने हिंदू धर्म में ज्योति कहा, ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा, उन्होंने नूर कहा। तो ज्योति और नूर एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में, जीसस ने कभी ये नहीं कहा कि आई एम गॉड, उसने यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, यही कहा। जिसको हिंदू धर्म वालों ने ज्योति कहा, इस्लाम धर्म वालों ने नूर कहा, क्रिश्चियन धर्म वालों ने लाइट कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही है, अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए गुरु नानक देव ने कहा, एक नूर, एक नूर। बड़े स्पष्ट शब्द में उन्होंने उसकी महिमा गाई है, एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, सतनाम, कितना सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है। और इसीलिए दिखाते कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, लेकिन 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? तो कहा सिद्धशिला। सिद्धशिला माना जो निराकार है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसका ध्यान कर रहे हैं। और आगे जाए महात्मा बुद्ध को भी ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया है, किसका ध्यान कर रहे हैं? तो कहा चिंकोन शेकी, जिसका ध्यान करने से शांति प्राप्त होती है। इसीलिए आज भी वेस्टर्न ईस्टर्न कंट्रीज में देखा जाए तो ध्यान करते, मेडिटेशन करते हैं। और आगे जाए पारसी लोग जब भारत में आए ईरान से, तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे। और इसीलिए क्या कहा गया, आज भी उनके मंदिर को कहते हैं द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सर्व धर्म मान्य कौन हुआ? भले नाम अलग अलग है, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा, सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, मालिक नहीं कहा। क्या आप मेरे को याद करो ऐसा कहीं कहा? नहीं, हाथ ऊपर किया, सबका मालिक एक है, मैं भी उसको याद करता हूँ, आप भी उसको करो। श्री कृष्ण ने स्वयं पूजा करके दिखाया कि मेरा आराध्य वो है, उसको याद करता हूँ। श्री राम ने पूजा करके दिखाई कि मेरा आराध्य शिव है, मैं भी उनको याद करता हूँ। तो हम राह भटके कहाँ से? हम राह कहाँ से भटके, जब ये देवी देवताओं ने, महान आत्माओं ने भी उसके तरफ इशारा किया, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा मेरी पूजा करो या मुझे भगवान के रूप में मानो, कभी कहा किसी ने? नहीं। तो हम राह भूले कहां से, सोचने की बात है। और इसीलिए सर्व धर्म मान्य एक है, वही सर्वोच्च शक्ति। इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभू। ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं उत्पन्न हुआ, उसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है। इसलिए जब भी शिव का मंदिर बनता है और मंदिर के अंदर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा जब करनी होती है तो शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं लाया जाता है। कहाँ से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता है, गुंबज नहीं लगाते हैं और ऊपर से उतारा जाता है। भक्ति में भी ये बहुत सुंदर यादगार है कि एक परमात्मा ही अवतरित होता है, किसी माँ के गर्भ से इस संसार में नहीं आता है। बाकी सभी देवी देवताओं को दिखाया, माँ के गर्भ से आया या उत्पन्न हुआ। अच्छा, शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है। बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाले हैं। और उसके पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है और शिव को कहा जाता त्रिदेव, यानी जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी उत्पन्न करने वाला है। तो तीनों देवताओं के भी उत्पत्ति करने वाला कौन है? शिव का अवतरण होता है और ये देवताओं की उत्पत्ति होती है। और ये तीनों देवताओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो कहा प्रकाश से हुई। और शिव के जितने भी मंदिर है भारत में, भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां शिव का मंदिर ना हो। महादेव उसको कहा, देव देव महादेव, देवों का भी देव महादेव उसको कहा, सभी देवताओं का भी देव। तो पांचों बातें उस एक के साथ लगती है। तो परमात्मा कौन है? सोचना अपने विवेक से। और जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते तो पांच बातें पूछी जाती है, आपका नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वही है या दूसरा है, तीसरा उसके क्वालिफिकेशन चाहिए, चौथा एड्रेस चाहिए और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन चाहिए। पांच बातों में पूरा परिचय आ जाता है। तो आज परमात्मा के परिचय में भी हमने पांचों बातों को देखा। सबसे पहला नाम है सदाशिव, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जो भी कहो। दूसरा उसका आकृति, उसका स्वरूप, निराकार ज्योति स्वरूप, प्रकाश पुंज, लाइट, नूर, अखंड ज्योति स्वरूप, ये परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। उसके क्वालिफिकेशन पांच बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। और उसका निवास स्थान एड्रेस, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, तो यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब परमात्मा इस संसार में आते हैं और धर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने, ये परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है। ठीक है, ये परमात्मा का संपूर्ण परिचय मिला। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपके बच्चे आपसे पूछे ये सभी भगवानों का हेड कौन है तो बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे? बता सकते हैं, अच्छी बात है। तो चलो थोड़ी देर उस परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं। स्वयं को आत्मनिश्चय करते हुए स्वयं को भी देखो, ब्रुकुटी की मध्य में प्रकाश स्वरूप में, और उस परम प्रकाश परमात्मा को देखो। और जैसे गीत चलेगा उसके सुंदर भावों में अपने मन को ले चलेंगे।
जीवन